नरसंहार एक प्रभावशाली शब्द है। इसका वास्तव में क्या अर्थ है और कौन तय करता है कि कब किसी संघर्ष को नरसंहार कहा जाए? SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार और आज SBS एग्जामिन श्रृंखला के इस अंश में बात कि नरसंहार शब्द का इतिहास क्या है और इस शब्द का प्रयोग आज के संदर्भ में किस प्रकार से किया जाता है।
He meant acid in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians, Hitler took action.
ये रफेल नमकिन है, नरसंहार शब्द को रचने वाले व्यक्ति। वो एक पोलिश वकील थे जिन्होंने 1944 में इस शब्द को कहा था। इस शब्द में ग्रीक उपसर्ग जिनोस है, जिसका अर्थ है नस्ल, और लैटिन प्रत्यय साइट, जिसका अर्थ है हत्या करना। ये आंशिक रूप से होलोकॉस्ट पर था, लेकिन पिछली ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी था।
Thought, how is it that one person can be prosecuted and convicted and punished for killing one person, but we don't have the same crime for someone killing hundreds or thousands or even millions of people?
International Association of Genocide Scholars की अध्यक्षा डॉक्टर मेलनी ओब्रायन का कहना है कि लेमकिन के अभियान के कारण ही 1948 में नरसंहार को मान्यता दी गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध बना दिया गया। इसे ही अब हम जेनोसाइड कन्वेंशन यानी नरसंहार सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वो बताती हैं कि जेनोसाइड या नरसंहार वो है जो किसी राष्ट्रीय, नस्लीय, जातीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया जाता है।
And the particular crimes of genocide include the crime of killing, crimes of causing serious bodily or mental harm, the crimes of transferring children from one group to another, and several other crimes are listed as well.
इस संधि में शामिल होने वाले देश ही इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं और दुनिया भर के 195 मान्यता प्राप्त देशों में से 153 देश इसमें आते हैं।
Now those state parties have made a promise, essentially they are bound under the convention to prevent and punish the crime of genocide.
तो यदि नरसंहार संधि तोड़ी गई तो उसके परिणाम क्या होंगे? वो बताती हैं कि जवाबदेही आपराधिक न्यायालय में या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो सकती है, यानी राज्यों या व्यक्तियों को अदालत में ले जाना, सबूत पेश करना, जिसके परिणाम स्वरूप नरसंहार की कानूनी मान्यता हो सकती है। न्यायालय के आदेशों में क्षतिपूर्ति, उस हिंसा को फिर न दोहराने का वादा या विस्थापित लोगों की वापसी की सुविधा शामिल हो सकती है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं और परिस्थितियां हैं जो नरसंहार की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रोफेसर सारा विलियम्स का कहना है कि केवल मुट्ठी भर को ही कानूनी मान्यता मिली है, क्योंकि नरसंहार को साबित करना बेहद मुश्किल है। अब जहां तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात है, तो केवल 4 मामलों में ही नरसंहार सम्मेलन का प्रावधान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल एक देश ही शिकायत कर सकता है। जाहिर है कोई भी अपने खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा।
And so what we've seen is a great reluctance. Obviously a state's not going to bring a claim against itself. So we've been relying on other states effectively reporting states committing genocide to the International Court of Justice, and for very many reasons, most obviously political, states haven't wanted to do that.
सितंबर 2023 में अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया सहित 32 देशों ने रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन के नरसंहार मामले का समर्थन किया, लेकिन परिणाम आने में अभी भी कई साल लग सकते हैं। प्रोफेसर विलियम्स के अनुसार ये इस प्रणाली की एक और खामी को उजागर करता है, यानी इसकी धीमी प्रक्रिया।
It's partly because of the different procedural steps. So you're talking probably 7 to 10 years potentially from the time something is commenced to the time you get a fully reasoned judgment. So it doesn't move particularly quickly.
इस बीच अदालत प्रोविजनल उपायों का कह सकती है, लेकिन व्यक्तियों के बारे में क्या? किसी को नरसंहार के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सारा बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी को देखता है, ठीक उसी तरह से जैसे कोई अदालत में हत्या के आरोप को देखता है।
The ICC looks at individual criminal responsibility, so they're looking at things to the standard of beyond reasonable doubt, in the same way a court would look at a murder charge in Australia, for example.
अपनी स्थापना के बाद से 22 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नरसंहार के लिए केवल एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये 2009 में सूडान गणराज्य के राष्ट्रपति उमर हसन अहमद अल बशीर के लिए जारी किया गया था, जब डारफुर नरसंहार हुआ था। उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। नरसंहार को साबित करने में कई राजनीतिक और कानूनी कारक शामिल होते हैं, लेकिन हम इस शब्द का इस्तेमाल केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में नहीं बल्कि हर समय देखते हैं। सारा कहती हैं,
The word has an emotional attachment to it in a way other crimes don't. And I think that's this idea that it's a hierarchy, it's this crime of crimes. I think there are different definitions.
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रोफेसर वासुकी नसाया का कहना है कि नरसंहार शब्द का इस्तेमाल विरोध और दुख व्यक्त करने के तरीके के रूप में भी किया जा सकता है।
It's often treated as if it should be something that's decided by courts or that the convention is the only reference point for a genocide. But in fact, people had, across the world, many different kinds of ways of talking about the kinds of mass atrocity that we now use genocide as sort of a singular term to describe.
Professor Nasaya says genocide is a powerful word, in part because it's so easily recognized.
It becomes a way to translate different experiences of grave abuse into a language that is now a way of talking about it in different parts of the world.
Professor Nasaya ka kehna hai ki genocide yani narsanghar shabd ek prabhavshali shabd hai kyunki ise aasani se pehchana ja sakta hai. प्रोफेसर नसाया ने कहा कि 1948 में जब से नरसंहार शब्द अंतर्राष्ट्रीय अपराध बना है, तब से इस पर बहस होती रही है, लेकिन हमें हमेशा सख्त कानूनी परिभाषाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके हमेशा से कई अर्थ रहे हैं।
It's always been contested and there's always been multiple meanings. I think it's important that our own conception of genocide does not start in the middle of the 20th century, but it's a 500-year history.
ओलिविया डिलोरियो की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।